أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. پروردگار عالم آپ تمام برادران و خواہران کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج ہم جو کتاب شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کتاب الہدایہ فی النحو. یہ کتاب جو شروع کرنے جا رہے ہیں ہم، ہمارے مدارس میں حوزہ علمیہ میں ایک بڑی معتبر کتاب ہے، اور اس کتاب کو جو انسان پڑھ لے، ادبیات عرب علم نحو سے اچھی خاصی اس کی آشنائی ہو جاتی ہے. میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی انسان اچھے نمونے سے ہدایہ، سیوطی ان کتابوں کو اگر پڑھ لے تو اعراب کے حساب سے اس کو کوئی بھی مشکل نہیں ہوگی. یعنی آپ جب عربوں کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ نہ سمجھا کریں کہ ان کو ادبیات بھی آتی ہے. مثلا اردو کا ایک ادب ہوتا ہے، ہر لینگویج کا ایک ادب ہوتا ہے. وہ ادیب بھی جانتے ہیں کہ یہ کلمہ کہاں استعمال ہوتا ہے، کلام کسے کہا جاتا ہے. خوب اس ہر لغت کے اپنے خد و خال ہوتے ہیں. اسی طرح علم ادبیات بھی درواقع قوانین ہیں علم نحو کے. یعنی علم نحو اگر آپ کو آئے گا، یہ علم اگر آپ جان لیں گے تو آپ اچھے نمونے سے فاعل، مفعول، صفت، موصوف، مضاف، مضاف الیہ، عطف، معطوف، معطوف علیہ، تابع، مطبوع، خوب یہ چیزیں آپ جان لیں گے. یہ میں نے تو ابتدائی حساب سے کچھ چیزیں آپ کے لیے بیان کی. جس کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ اعراب کے حساب سے، معنی کے حساب سے ادبیات عرب کو پہچانے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم نحو اور صرف کو پڑھے. علم نحو اس کو نہیں آئے گا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو زبر دینی چاہیے اس چیز کو، یا کسرہ دینی چاہیے، رفع دینا چاہیے، ضمہ دینا چاہیے، پیش دینا چاہیے. ان چیزوں کا اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو میری پیشنہاد یہ ہے، میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ یہ جو ہدایہ ہے، یہ جو کتاب ہم ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے شرع عوامل ہمارے یہاں پڑھائی جاتی ہے. شرع عوامل جرجانی یا ملا محسن یہ پڑھاتے ہیں. پہلے زمانے میں تو بہت ساری اور کتابیں تھیں، لیکن آج کل کے دور کے حساب سے جو سلیبس میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، جو مبتدی طالب علم ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے شرع عوامل، اس سے پہلے شاید نحو امیر کچھ مدارس میں، اور اس کے بعد دوسرے سال میں اس کو ہدایہ اور سمدیہ پڑھائی جاتی ہے. بس جو انسان اچھے نمونے سے ہدایہ کو پڑھ لے تو اس کو کافی مدد ملے گی، اور ان پر تمرین کرے، پریکٹس کرے، تو میرے خیال میں وہ اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو، اور سمجھنے کے حساب سے اس کو کافی آسانی پیش آئے گی. بشرطی کے دوسرے جو علوم بھی ہیں، علم حدیث اور رجال اور درایت جو ہے، ان چیزوں کو بھی جان لے، ان قواعد کے سے بھی اگر آشنائی پیدا کرے گا تو انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے نمونے سے پہچان سکے گا. سب سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں مثلا کتاب میں وارد ہوں، فہرست ضروری ہے، انڈیکس آپ کو بتانا ضروری ہے کہ اس کتاب میں ہے کیا. ये ऐसे नहीं कि मतलब मैं किताब पढ़ूं और आपको पता ही ना हो कि ये किताब इसमें क्या क्या है, कौन सी आभास है। मैं फ़कत फेरेस इंडेक्स पढ़ लेता हूँ कि ताकि जो अफराद तालिबे इल्म नहीं भी हैं, मसलन जो हौजे में नहीं पढ़ते, किसी मदरसे में नहीं पढ़ते, उनके लिए भी कोशिश करेंगे इस तरीके से बयान करें कि वो भी आसानी से हमारे ये मतालिब समझ सकें। ज़्यादा इसको पेचीदा मतालिब और बिल्कुल उलझाने वाली जो बातें होती हैं ऐसी नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे जो आम अफराद हैं जो यूट्यूब या फेसबुक या ये सोशल मीडिया के जो चैनल्स वगैरह हैं वो इस्तेमाल करते हैं, अगर वो सुने तो उनको भी कोई चीज़ समझ में आए, क्योंकि इल्म फ़कत किसी ख़ास फ़र्द के लिए नहीं है, सबके लिए। तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी ये होगी कि बयान को और मतालिब को आसान करके पेश किया जाए और ताकि सब इस्तफादा करें। लेकिन शर्त ये है कि जो 70-72 जो दुरूस हैं, जो लेक्चर हैं और दर्स हैं, सबक हैं, इनको समझें, इनको सारे के सारे सुने। ऐसे नहीं कि बस शुरू वाले 5 मिनट सुने और अल्लामतुद्दहर बन जाए, ऐसे नहीं होगा। या आगे आगे करके मसलन, अगर ये वो सिस्टम नहीं है कि मसलन कोई किस्सा कहानी वाला, ऐसे नहीं है। इस दर्स में आपको यहाँ पर जो है वो पूरी किताब पढ़नी चाहिए और पूरा लेक्चर सुनना चाहिए, पूरा सबक सुनना चाहिए। पूरा सबक सुनेंगे तो इंशाल्लाह वो चीज़ समझ में आ जाएगी। आज का जो पहला दर्स मसलन होगा इल्म नहव और कलमा और उसके अकसाम के बारे में जो होगा, इंशाल्लाह उस दर्स को अगर आप पूरा सुनेंगे तो गारंटी से मैं आपको कहता हूँ उस दर्स को आप अगर याद कर लें तो इल्म नहव की आपको तारीफ आ जाएगी। अगर आपसे कोई पूछे कि इल्म नहव किसे कहते हैं तो आराम से उसको बता देंगे कि इल्म नहव इसे कहते हैं। इल्म नहव की क्या डेफिनेशन है? इल्म नहव की ये डेफिनेशन है। इल्म नहव किस काम का होता है, उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है। खूब, लेकिन शर्त यह है कि पूरा दर्स सुने, पूरा लेक्चर सुने, ऐसे नहीं कि आधे में छोड़ के चले जाएं। फिर इंशाल्लाह आपके मज़र में, मैं अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में, अगर पूरा दर्स सुनेंगे इंशाल्लाहुल अज़ीज़ आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा। इस जो मैंने इख्तियार किया है तरीका, और मुख्तलिफ असातिज़ा ने भी मिल बैठ के जो रविश और तरीका अपनाया है, क्योंकि मेरे अल्फाज जो ज़्यादा इस्तेमाल में करूँगा वो फ़ारसी होंगे, अरबी होंगे, ताकि आप भी आराम आराम से इन अल्फाज से मानूस हो जाएं। ऐसा ना कहें कि ये मौलाना साहब कहाँ से ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्फाज जानबूझ के मैं इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि जो अफराद हौजे से मरबूत होना चाहते हैं वो इन अल्फाज से ज़रूर बज़रूर क्या हों, आशना हों, क्योंकि आगे जाके दुरुस में लेक्चर्स में जिसके भी सुनेंगे वो ये अल्फाज इस्तेमाल करेगा। अगर नहीं आएंगे तो बिलाकर आप फिर वहां फंस जाएंगे। पहला पहला जो हमारा दर्स होगा वो होगा इल्म नहव, कलिमा और उसके अकसाम के बारे में होगा। दूसरा जो दर्स होगा हमारा वो होगा इस्म, फेल और उसकी अलामतें। इस्म की अलामतें हैं, फेल की क्या अलामतें हैं, इस हिसाब से हर्फ किसे कहा जाता है। हमारा जो तीसरा दर्स होगा वो हर्फ के बारे में होगा। आपने सुना है कि ये हर्फ है, ये हर्फ है क्या, इसके बारे में हमारा दर्स होगा तीसरा दर्स। चौथा दर्स जो होगा वो हमारा होगा इसमें मोरब के बारे में, इसमें मोरब के बारे में खूब। और पांचवा इसम के एराब के हिसाब से उसकी अकसाम, और जो सातवां दर्स होगा इसमें मुनसरफ गैर मुनसरफ के बारे में होगा, असबाब मनासरफ के बारे में आठवां दर्स होगा। नवा दर्स हमारा वही उस असबाब मनासरफ जो हैं, नौ जो असबाब हैं उसी का ही, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। इसी तरह जो तीसरे मरहले में हम जो वारिद होंगे, दाखिल होंगे, वो मरफूआत में हम इंशाल्लाह बहस करेंगे। फ़ाइल किसे कहा जाता है, और 11वें दर्स में नायब फ़ाइल के बारे में गुफ्तगू की जाएगी। 12वें दर्स में मुब्तदा खबर हो, मुब्तदा और ख़बर के बारे में गुफ्तगू करेंगे, और 13वें दर्स में अकसाम खबर के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसी तरह जो 15वें दर्स से 19वें दर्स तक मफ़ूल के बारे में, मफ़ाइल कौन से हैं, उनकी मफ़ूल बिही, मफ़ूल मुतलक और मसलन मुनादा, मफ़ूल लहू, मफ़ूल माऊ, इनके बारे में गुफ्तगू होगी। और दर्स नंबर 20 से हाल के बारे में, तमीज़ के बारे में और मुस्तस्ना के बारे में, ये तीन दर्स जो हैं इन तीन चीज़ों के बारे में होंगे। और जो 23वां दर्स होगा हमारा वो इस्म खबर नवासिख के बारे में होगा। खूब इंशाल्लाह पढ़ेंगे कान और उसकी अखवात, इन अन कअन उर्फ मुशब्बा बिलफेल, इनके बारे में, लाए नफी जिन्स, इनका इसम क्या होता है, इनकी खबर क्या होती है, बिलाकर क्या होते हैं, किस चीज़ पर ये दाखिल होते हैं, इनके बारे में गुफ्तगू होगी। 25वां हमारा दर्स मुजाफिले के बारे में होगा, और इंशाल्लाह 27वें दर्स में हम तवाबे में दाखिल होंगे। नात सुनते हैं, ये इसकी सिफत है, ये मौसूफ है, ये बदल है, ये मुबदल मिन है, ये अदफ है, इसके बारे में इंशाल्लाह वजाहत देंगे 27वें दर्स में। और 31 जो दर्स है हमारा वो जमायर के बारे में, इसमें मबनी के बारे में, इसमें इशारा के बारे में, किनायात के बारे में, ये सारे दुरुस हमारे 7 लेक्चर तकरीबन इसके बारे में होंगे। और 38वां जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा मारिफा और नकरा किसे कहते हैं। आपने सुना होगा कि अरबी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है मारिफा और नकरा, इसकी डेफिनेशन, इसमें अदद किसे कहा जाता है, तमीज़ अदद क्या होती है, कैसे होता है, तसनिया जमा इनका एराब वगैरह इसके बारे में, जमे मुकसर, इसमें फ़ाइल, सिफत मुशब्बा, इसमें तफजील, ये 4 दस इसके बारे में होंगे। और इसी तरह अफ़ाल कुलूब, अफ़ाल नाकिसा, और मा ज़ाल मा बरह मा फतेह मन फ़क्का, इसके बारे में गुफ्तगू होगी। और जो इंशाल्लाह 57 नंबर दर्स से लेकर 72 नंबर दुरुस तक, यानि 57 लेक्चर से लेकर 72 लेक्चर तक हमारे जो दुरुस होंगे वो हरूफ के बारे में होंगे। हर्फ जर किसे कहा जाता है, हरूफ जर कितने हैं, हरूफ मुशब्बा बिल फ़ैल कितने हैं, और हरूफ अत्फ कौन से हैं, हरूफ ज़्यादत, हरूफ तफसीर, हरूफ तवक्को, हरूफ शर्त, ये सारे आप इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये 7-8 लेक्चर इनके बारे में टोटल तकरीबन इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 72 लेक्चर्स में, 72 दर्स में हम इस कोर्स को पूरा करें। चले आते हैं, आप इब्तदा करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं पहले दर्स से। हमारा पहला लेक्चर इल्म नहव के बारे में है। इल्म नहव कि सबसे पहले इंसान जब कोई भी इल्म पढ़ता है तो उसकी तारीफ और उसका इंट्रोडक्शन और उसकी डेफिनेशन ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछे इल्म नहव किसे कहा जाता है तो क्या जवाब देंगे? इल्म नहव हकीकत में, आसान और मैं वाज़े अल्फाज में बयान करूं, इसकी इबारत पढ़ते हैं, पहले मैं बयान करूं कि इल्म नहव है क्या। इल्म नहव दर हकीकत में कुछ कवायद और उसूल होते हैं, कुछ कवायद और उसूल हैं जिन कवायद और कवानीन और उसूलों की बुनियाद पर जो 3 कलमे हैं उनको मोरब और मबनी होने के हिसाब से जो हम पहचानते हैं इसको इल्म नहव कहा जाता है। मसलन मिसाल दूं आपको, फी अल मदरसा अत तिलमीज, मसलन उर्दू में मैं कहूं कि मदरसे में, स्कूल में क्या है, तालिब इल्म है। तिलमीज कहते हैं वही स्टूडेंट को, तालिब इल्म को। और फी की माना है, फी का माना है मैं, मदरसे का माना वही स्कूल और मदरसा जो भी माना है। अच्छा, अब यहां पर क्या है, अत तिलमीज फिल मदरसा, दुरुस्त, ठीक है। अब अत तिलमीज को मैं आखिर में क्या दूं, पेश दूं, कसरा दूं, जबर दूं, क्या दूं? अत तिलमीजो, ये मुझे किसने बताया, ये इल्म नहव बताएगा कि यहां अत तिलमीजे न पढ़ो, अत तिलमीजो फिल मदरसा पढ़ो, ठीक। इसी तरह अल मदरसा ते, फी अल मदरसा ते, ये अल मदरसा ते को जो आखिर में जो ते को मैं कसरा दे रहा हूं, ये क्यों दे रहा हूं, ये किसने मुझे कहा है? खूब, ये है इल्म नव, जो आप अत्तिलमीजो फिल मदरसा में अत्तिलमीजो को आप जम्मा पेश दे रहे हैं और अल मदरसते को आखिर में कसरा दे रहे हैं, ये हमें इल्म नव बताता है कि किस कलमे को कौन सा एराब देना चाहिए, आया एराब भी देना चाहिए या एराब देना नहीं चाहिए। ये आसान उर्दू में इल्म नव हमें बताता है कि दरवाके क्या करें हम, कलमे की आखिर में जो एराब होता है वो, पहली बात उसको एराब दें या ना दें, यानी मोरब है या मबनी है, और दूसरी बात ये कि एराब दें तो कौन सा दें। दूसरी मिसाल दे दूं, मैं कुरान से मिसाल दे दूं, मसलन मसलन देखें, आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह में आप लिल्लाह को आप आखिर में क्या दे रहे हैं, कसरा दे रहे हैं। अच्छा, सूरह तौहीद में आए, वो भी सूरह, वो भी नमाज में सब पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कुल हुवल्लाहु। अच्छा, वहां पर आपने हे पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह हे, यहां कुल हुवल्लाहु, ये क्या हो गया, अल्लाह तो वही है, वहां पर पेश, यहां पर, वहां पर कसरा, यहां पर जमा। अच्छा, या मा कदरुल्लाह हक कदरे, यहां पर क्या है, फतह है। तो ये जो आप अल्लाह को आपने पेश दिया, अल्लाह को आपने कसरा और फतह दी, ये हमें कैसे पता चले कि यो इसको मसलन, ये तो कुरान को तो एराब बिलाकर दिए गए हैं और इसीलिए हम आसानी से पढ़ देते हैं, लेकिन अरबी इबारत अगर आपके सामने आए या मसल एराब दिया हुआ है, आपको कैसे पता चले कि ये एराब क्यों है, वजह क्या है, इसको कसरा तो कसरा क्यों, मसल मुजाफिले है या हर्फ जर दाखिल है हो, या ये जमा क्यों दिया गया है, इसको पेश क्यों दिया गया है, इसी तरह इसको फतह क्यों है। इल्म नौ में हमें ये आखिरी एराब के बारे में मालूमात मिलती है कि इसको एराब, इस कलमे को दें तो कौन सा दें, या एराब असलन में असलन न दें हो। ये कलमे की आखिरी हालत को पहचानना मोरब और मबनी होने के हिसाब से, ये इल्म नवा में क्या की जाती है, ये मैं उर्दू में आपको मैंने समझाया, वगरना अगर हम इबन हशाम और समदिया सूती की तारीफ को लेके बैठ जाएं तो पूरे पूरा महीना गुजर जाएगा कि मसलन ये लफ्ज क्यों आया, ये लफ्ज क्यों नहीं आया। आसान उर्दू में यही है कि इल्म नवा में हमें बिला करे मोरब और मबनी होने के हिसाब से कलिमात की पहचान करवाई जाती है कि इसको जमा क्यों है, इसको कसरा क्यों है, इसको फतहा क्यों है। अच्छा, इल्मे नौ का ये तो डेफिनेशन हो गई। अच्छा, इल्मे नौ के बारे में दूसरा सवाल ये आएगा कि आपका हदफ क्या है, आप ये इतना जो इल्मे नौ पढ़े हम, आपने कहा कि ये 72 लेक्चर्स का ये दौरा होगा, पूरा कोर्स होगा, ये हम पढ़े तो क्यों पढ़े, इल्म नौ हदफ क्या है, आपका मकसद क्या है, हदफ यानी वही मकसद। अच्छा, मकसद हमारा ये है कि कलाम अरब में हम जबानी खता से क्या बच जाएं, महफूज हो जाए हमारी जबान जबानी खता से, यानी जहां जमा पढ़ना वहां कसरा ना पढ़े, जहां कसरा पढ़ना वहां पर हम जमा ना पढ़े। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पढ़ रहे हैं और वहां पर मसलन फायल है या मफूल है, वो जबर की जगह मैंने जमा पढ़ लिया, जमे की जगह हमने कसरा पढ़ लिया, तो माना भी क्या हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर इल्म नवा में आएगा तो इन चीजों से आशनाई हो जाएगी। हदफ ये है कि हमारी जबानी खताएं, जो जबान के जरिए हम मसलन खता करते हैं एराब के हिसाब से, उसकी पहचान हो जाए, और जब जबानी खता से हम आशना हो जाएंगे कि कौन सी जगह गलत पढ़ रहे हैं, कौन सी जगह सही पढ़ रहे हैं, तो हमें माना करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। कुरान समझने के हिसाब से, अहादीस से पैगंबर समझने के हिसाब से ये इल्म बड़ा मुफीद इल्म है। अच्छा, इस इल्म का सब्जेक्ट क्या है, मौजू क्या है, वो है कलमा और कलाम। अच्छा, फिर सवाल आएगा कि ये कलमा क्या है, ये कलमा किसे कहा जाता है, हो इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं, तवज्जो करें। कलमा, कलमे की तारीफ ये है कि एक लफ्ज होता है जो मुफरद माना पे दलालत करता है, लफ्ज भी एक और मुफरद माना भी क्या करेगा, वो दलालत करेगा। मसलन जैसे फारसी में दो चरखे कैसे कहते हैं, बाईसाइकिल को, साइकिल को क्या कहते हैं, दो चरखे। अच्छा, ये क्या है, ये लफ्ज़े दो चरखे हो, ये साइकिल किसके लिए वजह किया गया है, ये इस मशीन के लिए जिसको दो टायर हैं, हैंडल है, पेंडल है, हो ये शख्स चलाता है, इसी चीज का नाम क्या है, साइकिल। खूब, ये कलमा साइकिल या फारसी में मसलन दो चरखे, किस चीज के लिए वजह किया गया है? इसी चीज के लिए, दो चरखे के लिए, इसी साइकिल के लिए वजह किया गया है। बस एक लफ्ज जो मुफरद माना भी दलालत करे उसको क्या कहा जाता है? कलमा। मेरे ख्याल में वाजे हो गया। अच्छा, ये हजरत कलमा जो है इसकी तीन किस्में हैं, ऐसे नहीं है कि ये बस अकेला है। कलमे की तीन किस्में हैं, ये तो तारीफ कर दी हमने। इस्म, फेल, हर्फ। मेरे साथ इकट्ठे कहें, इस्म, फेल और हर्फ। अच्छा, ये इस्म क्या है फिर? इस्म का आपने नाम सुना होगा बहुत, ये इस्म है, ये फेल है, ये हर्फ है। चलें आज आपको बता देते हैं कि इस्म किसे कहा जाता है। इस्म हकीकत में ऐसा कलमा जो मुस्तकिल माना पर दलालत करे बगैर किसी जमाने के, यानी जमाना उसका जुज नहीं है। मसलन मैं कहूं जैदुन, जैदुन, खूब, जैदुन, जब मैं कहूं इसमें कोई जमाना है, जैद चाहे जमाने माजी में हो, चाहे जमाने मुस्तकबिल में हो, चाहे जमाने हाल में हो, कोई फर्क नहीं करता, जैदुन जैदुन है, मुस्तकिल माना भी दलालत भी कर रहा है। इसमें इस माना लेने में किसी का मोहताज भी वो नहीं है। अच्छा, फेल किसे कहा जाता है? फेल कहते हैं वही कलमा, कलमे की तारीफ जहन में रहे, उसको अगर आप फरामोश कर देंगे तो ये भी गई। फेल किसे कहते हैं? फेल ऐसा कलमा जो दलालत करे मुस्तकिल माना पर, मुस्तकिल माना यानी क्या? यानी अपनी माना लेने में किसी और का मोहताज नहीं है। अच्छा, फेल यानी ऐसा कलमा जो मुस्तकिल माना पर दलालत करता है लेकिन किसी जमाने में, एक जमाने के साथ, किसी जमानों में से किसी एक जमाने के साथ मिला होगा, यानी या माजी होगा वो फेल, यानी वो काम जो हुआ होगा या माजी में हुआ होगा या मुस्तकबिल में, फिलहाल वो जमाना उसमें क्या होगा? मुशख्खस होगा, मुअय्यन होगा। इस्म में जमाना मुशख्खस और मुअय्यन जरूरत नहीं है इस्म को। जैदुन जब मैंने कहा, अब जैदुन में से ये समझ नहीं आ रहा कि जैदुन माजी में, नहीं नहीं आ रहा, जैदुन मुस्तकबिल में नहीं, जैदुन में ये चीज नहोफ्ता और पोशीदा नहीं है कि ये जमाने माजी में, फ्यूचर में या अभी इस हाल में। लेकिन अगर हम कहें मसलन नसर, उसने मदद की, नसर उसने मदद की, हो मदद की, उसने मदद की, यानी क्या? जमाने माजी में, पास्ट में, माजी में यानी पास्ट, गुजरा हुआ जमाना, यानी उसने मदद की। अब इससे खारिज हो गया कौन सी चीज? फ्यूचर और करंट, जो अभी इस हाल में हम हैं, प्रेजेंट में जो हम हैं, वो इससे निकल गया। तो फेल जो होगा वो किसी जमानों में से किसी न किसी जमाने के साथ मुख्तस होगा। और तीसरा जो कलमे, तीसरी जो कलमे किस्म है वो है हर्फ। हर्फ वो है जो जो जिसकी न माना मुस्तकिल है न कोई जमाना है, यानी अपने माना देने में किसी न किसी से ये टूचन करेगा, मिलेगा। ये बेचारा हर्फ वैसे बड़े काम का है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे, काम बड़ा देता है ये हर्फ, लेकिन माना देने में, माना पहुंचाने में इसको किसी न किसी के साथ इल्हाक करना पड़ेगा, ठीक, वरना इसका माना पैदा नहीं होता। अच्छा, इबारत पढ़ते हैं, ये हिदाया की इबारत आप देखें, ये एक लाइन में पढ़ता हूं, इसका तर्जमा भी करता हूं, आप भी देखें। हिदाया की किताब कहीं से डाउनलोड आप कर लें, वैसे हौजात और मदारिस में तो ये किताबें मौजूद हैं, हर तालिबे के पास होती है, लेकिन जो अफराद कह रहे हैं कि ये कौन सी किताब है, कहाँ से मिलेगी, आसानी से डाउनलोड हो जाती है ये किताब, अल हिदाया फिन्ना लिखेंगे ये किताब डाउनलोड हो जाएगी। अच्छा, डाउनलोड कर लिया आपने ये मतालिब, क्योंकि यूट्यूब पे और दूसरे शबकाए मजाजी पर, सोशल मीडिया पर ये दुरुस्त अपलोड हो रहे हैं, इसलिए आपकी रहनुमाई करना ज़रूरी है, ऐसे ना कहें कि ये कौन सी किताब है, कहाँ से मिलेगी। अच्छा, तारीफ ओ इल्म नव, इल्म नव की तारीफ, डेफिनेशन क्या है? हुआ इल्मुन बे उसूलिन, हुआ इल्मुन बे उसूल, ये इल्म है कुछ कवायद का, कौन सा इल्म? इल्मे
नव।
तो उरफो बिहा, तो उरफो बिहा जाना जाता है, पहचाना जाता है बिहा इन कवायद से, किसको? अहवाल अवाखिर कलिम सलास, तीन कलमों की आखिरी हालत को। कलमे कौन से थे? अभी अभी हमने बयान किया इसम फेल हर्फ। इन तीन कलमों की आखिरी हालत को पहचानने के लिए क्या है? कुछ कवानीन हैं। उन कवानीन के इल्म का नाम इल्मे नहव है। बहुत आसान हो गया। मिन हैसुल इराब वल बिना, किस हिसाब से पहचानेंगे कि ये मोरब है या मबनी है? मिन हैसुल इराब वल बिना, यानी पहचानने का तरीका क्या है वो बता रहे हैं कि मिन हैसुल इराब वल बिना, मोरब और मबनी होने के हिसाब से। वह कैफियत तरकीब बअज़हा मा बअज़िन, ये इल्म और क्या काम करता है? बस की बस के साथ कैसे तरकीब होनी चाहिए, ये भी ये इल्म बताएगा। इस लफ्ज को इस लफ्ज के साथ कैसे मिलाऊं, खूब मुजाफ को मुजाफ के लाए के साथ कैसे मिलाना चाहिए, अच्छा सिफत और मौसू में कौन सा राबता होना चाहिए, ये बस की बस के साथ तरकीब कैसे होती है, ये भी इल्म नव में पता चलेगा हमें। वादे हो गया। अच्छा मकसद मैंने आपको बताया, मकसद इस इल्म का क्या है? अलगरज मिन हो, अलगरज यानी वही हदफ वही मकसद, मिन हो यानी वही इल्म नव से। अलगरज मिन हो सियानतुल लिसान अनिल खता, जबान का बचाना किससे, महफूज करना किससे? खता से। कौन सी खता? अल्लफजी, खताए लफजी, खताए फिक्री से नहीं। खताए फिक्री से बचना है तो इल्म मंतिक पढ़ें, लेकिन खताए लफ्जी से बचना है तो इल्म नहव और अदबियात पढ़ें। किस में? कलाम अरब में। इल्म नहव कहाँ काम देगा? कलाम अरब में। ऐसे ना हो कि आप कहेंगे मौलाना साहब हमने तो ये कायदे पढ़ लिया, पता नहीं वो मसलन दूसरे जो लोग आते हैं उर्दू सिंधी पंजाबी पश्तो वगैरह, नहीं ये जो कवायद आपको बताए जा रहे हैं किसके हैं? कलाम अरब के कवायद हैं। अच्छा उसके अलावा हमने कहा कि कलमा किसे कहा जाता है, कलमे की हमने तारीफ की खारिज में जब हमने बयान किया, हमने कलमे की तारीफ की। कलमा क्या था? उसकी इबारत ये है अल कलमतो, ये लफ्ज़ वुज़ अल मानन मुफ़रद। कलमा क्या है? लफ्ज़ है जिसको वज़ा किया गया है मुफ़रद माना के लिए, लफ्ज होगा मुफ़रद माना के लिए। जैसे मैंने मिसाल दी कौन सी? साइकिल वाली, दो चरखे वाली, ये लफ्ज़ है मुफ़रद माना, उसका माना एक ही है जो खारिज में आप देख रहे हैं। अच्छा अब ये खुद वजाहत है, ये किताब में नहीं है मसलन कि ये लफ्ज़ क्या होता है। उस खास आवाज को कहा जाता है जो इंसान के मखारिज से यानि मखारिज हरूफ जो निकलती है उसको, उस सदा को, उस आवाज़ को कहा जाता है। लिहाजा हर आवाज़ यहाँ पर मुराद नहीं है, हर आवाज़ को लफ्ज़ नहीं कहते, उस आवाज़ को कहते हैं जो मखारिज हरूफ से निकले। वाज़े हो गया। अच्छा इसी तरह इस के हमने अकसाम बयान किए कलमे के, अकसाम हुआ वही मुनहसरतुन फिस सलासा, कलमे की तीन किस्में हैं, इस्मुन व फ़ेलुन व हर्फुन, इस्म फ़ेल और हर्फ, तारीफ याद है इनकी। अच्छा यहाँ पर एक सवाल है आपके जहन में भी आया होगा, वो सवाल कौन सा है? सवाल ये है कि अच्छा ये बताएं कि कलमे की तीन किस्में क्यों हैं? आपने कहा कि कलमे की तीन किस्में, इसकी कोई वजह है या नहीं है? रीज़न कौन सा कि आपने कहा कि कलमे की तीन किस्में, वजह क्या है? कलमे की चार किस्में भी हो सकती हैं, पांच किस्में हो सकती हैं। इसके लिए मामूलन जो कुतुब नहव हैं ये उसमें कुछ दलायल देते हैं। एक है दलील अकली, एक है दलील नकली, और एक है दलील इस्तकराई। दलील नकली ये है कि मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि कलमे की तीन किस्में हैं, इसको दलील नकली है या नकल हुआ है अहले बैत अलैहिस्सलाम से ये कि कलमे की तीन किस्में होती हैं। अच्छा अकली क्या है? अकली ये है कि यहाँ पर तकसीम सुनाई है और हसर है, असलन चौथी किस्म बनी नहीं सकती। कैसे? कैसे ऐसे बयान करते हैं, कलमा कलमे की या मुस्तकिल माना है या मुस्तकिल माना नहीं है, خوب، اگر مستقل معنی ہے تو یا وہ زمانہ اس کا جز ہوگا، یعنی زمانہ بھی اس کے ساتھ ملحق ہوگا تو وہ فعل ہے، اگر مستقل معنی ہے زمانہ ملحق نہیں ہوگا تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسم کہا جائے گا۔ دو قسمیں ہو گئیں، اگر مستقل معنی ہو ہی نہیں تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حرف کہا جائے گا۔ چوتھی قسم چیلنج ہے، کوئی لے گیا ہے؟ نہیں ہے، چوتھی قسم کوئی بھی نہیں ہے، بس تین قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ دلیل ہے، دلیل عقلی ہے، اصلا اس میں حصر ہے، چوتھی قسم نہیں بن سکتی۔ استقرائی، دلیل استقرائی کیا ہے؟ دلیل استقرائی یہ ہے کہ ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں، دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں، علم نحو کی کتابیں موجود ہیں، ساری کتابیں ہم نے دیکھی ہیں۔ خوب، ہم نے نہیں دیکھی تو ہمارے اساتذہ نے دیکھی ہیں، جو محقق ہیں، پژوہشگر ہیں، افراد ہیں، انہوں نے یہ کتابیں دیکھی ہیں، انہوں نے تاکہ عربوں کے ساتھ جب ہم گفتگو کرتے ہیں، بحرین کے، عراق کے، یمن کے جو افراد ہیں، ان ساری کتابوں سے، افراد سے ملنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ اگر چوتھی کوئی قسم ہوتی تو کن کتابوں میں ہوتی نا؟ نہیں ہے۔ استقرا کیا ہم نے، ڈھونڈا، خوب، ڈھونڈنے کے بعد ہمیں پتا چلا کہ کلمے کی جستجو کے بعد، جستجو کی، ہم نے تفحص کیا، پھر بھی ہمیں کیا، ان تین قسموں کے علاوہ چوتھی قسم کوئی بھی نہیں ملی۔ پڑھتے ہیں، دیکھیں، اقسامها وهي منحصرة في الثلاثة، کلمے کی جو اقسام ہیں یہ منحصر ہیں کس میں؟ تین میں۔ اسم فعل حرف، اسم فعل اور حرف۔ وجہ الانحصار، یعنی انحصار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہ آپ نے کہا کہ یہ تین قسمیں، چار کیوں نہیں ہیں؟ کہہ رہے ہیں انھا اما لا تدل علی معنا فی نفسها، یا تو یہ کلمہ دلالت نہیں کرتا مستقل معنی پر، فی نفسها یعنی مستقل معنی پر دلالت نہیں کرتا، فہو الحرف، تو وہ کیا ہے؟ حرف ہے۔ او تدل علی معنا فی نفسها، یا یہ کلمہ مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے، وقترن معناها بأحد الأزمنة الثلاثة، اور وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا ہے، فہو الفعل، اگر ملا ہوا ہے تین زمانوں میں کسی ایک کے ساتھ وہ فعل ہے۔ او الا معنا فی نفسها ولم یقترن معناها بأحدها، مستقل معنی پر دلالت کرتا ہے لیکن کسی زمانے کے ساتھ ملحق نہیں ہے، ملا ہوا نہیں ہے، فہو الاسم، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسم کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک لفظ ہے فی نفسها، فی نفسها سے مراد یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے استقلال، دوسرا ہوتا ہے عدم استقلال، ایک ہوتا ہے مستقل، دوسرا ہوتا ہے عدم مستقل۔ مستقل کہتے ہیں بھائی آپ مثلا بھائی کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں، یا اپنے بابا کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں، یا مستقل ہیں، لفظ استعمال ہوتا ہے، نہیں ابھی تو میں اپنے والدین کے ساتھ ہوں، اور وہ سارا، یعنی کیا آپ کا ابھی گزر بسر مستقل نہیں ہے، ڈیپینڈنٹ ہیں آپ، درست، الگ، یعنی آپ کا فعلاً کوئی بھی حساب کتاب نہیں ہے، یہ مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح کلمے کا یا مستقل معنی ہوگا یا مستقل معنی نہیں ہوگا، اگر مستقل معنی نہیں ہوگا یعنی اپنے معنی دینے میں وہ کسی اور کا محتاج ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ حرف، اسے کہتے ہیں مستقل فی نفسها۔ خوب، اپنے معنی دینے میں اگر کسی کا محتاج نہیں ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ فعل یا اسم، فعل ہو جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملا ہوگا، اسم وہ جو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوگا۔ تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا درس، بہت آسان، علم نحو کی ہم نے تعریف پڑھی، علم نحو کا ہم نے ہدف پڑھا، مقصد پڑھا، کیوں علم نحو پڑھتے ہیں، علم نحو کا غرض و غایت پڑھنے کے بعد علم نحو کا موضوع پڑھا جو کلمہ اور کلام ہے، کلمے کی تعریف ہم نے پڑھی، کلمے کی اقسام پڑھی، اسم، فعل اور حرف، اور ہر کسی کی ہم نے، ہر ایک کی ہم نے کیا کی؟ ڈیفینیشن بھی کی۔ انشاءاللہ العزیز آج کا درس آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ڈسکرپشن میں ہم کچھ سوالات ہیں وہ سینڈ کریں، اس کی تفصیل، اس کی پک سینڈ کر دیں گے، یا اس کے خود متن سینڈ کر دیں گے، وہ ٹیکسٹ سینڈ کر دیں گے، تاکہ وہ سوالات آپ اپنے آپ سے کیا کریں، زور آزمائی کریں کہ مجھے یہ درس سمجھ میں آیا یا درس سمجھ میں نہیں آیا۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں معارف قرآن، معارف اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔